अल्लाह ताला कह रहे हैं इनकी खुददारी को देखकर ना वाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल है, यानी अपेरेंटली दीनदार बड़ा खुशहाल लग रहा होता है। तुम इनके चेहरों से इनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे नहीं है कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे, यानी लोगों के पीछे नहीं पड़ते कि हमें दे के जाओ। उसकी एयानत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा ना रहेगा, छुपा के दो। क्यों दूसरों के बीच में देते लेते हो ताकि तुम उनको दिखाओ? तुम अल्लाह के लिए करोगे, अल्लाह ताला खुद ही तुम्हारे लिए ये काम करेगा। फिर इसके बाद एक अब आखिरी आयते हैं, बिल्कुल एक आखिरी आयत है जिसमें अब सदके का टॉपिक फिनिश हो रहा है और सूद का टॉपिक शुरू हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है इस वक्त ये बात बयान करते हुए कि एक तरफ एक बड़ी खूबसूरत फुहार थी, अभी तक हमने इंजॉय किया ना, इतनी तो खूबसूरत आयतें हैं सदके की, अब इसके बाद बिटर, ब्लैक, सूद, डार्क मनी, लेकिन करनी पड़ेगी। आखिरी आयत को एंजॉय करें, ये एक पुल है, एक ब्रिज है सदके और इंटरेस्ट के बीच में। जो लोग अपने माल शब और रोज खर्च करते हैं खुले और छुपे, इनका दर इनके रब के पास है, इनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं। खर्च करने के चार ही तरीके होते हैं ना, या सुबह को या शाम को, या लोगों के सामने या छुपा के। मुराद है कि वट एवर इज द पॉसिबल वे, रात है तो सुबह का इंतजार ना करो, अकेले हो तो चार लोगों के आने का इंतजार ना करो कि सबके बीच में दूंगा, और सब में बैठे हो तो इसका इंतजार ना करो कि अकेला होऊंगा दूंगा, बस जिस तरह है कर दो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर तुम्हारा अजर है। इसके बरक्स आयत 275, याद रखिए तरतीबे नजूल में ये आखिरी आयत थी सूद की हुरमत की, लेकिन कुरान की तरतीब में ये पहली आयत है, इसलिए कुछ लोगों को बड़ी सख्त लगती है। मेरा पढ़ाने का अंदाज हमेशा यही होता है, दौरे कुरान में, सवीलुल जन्ना में तो नहीं क्योंकि वो तवील सफर होता है, पता नहीं आखिरी पारों में जाने तक लोग कहाँ रहे, तो यहां मैं इसके तर्जमे और मुख्तसर सी वजाहत पे इक्तफा करती हूँ। लेकिन आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को जो नासूर चिपके हुए हैं उसमें वही हैं जो सारे मुआशरों पर इस वक्त आपको दिख रहे हैं, और वो इंटरेस्ट का जाल है। लिहाजा यहां हम सिर्फ इन आयतों की शिद्दत को महसूस करेंगे, लफ्जी वजाहत तक ही रहे तो बहुत है। इस पे तीन मुख्तलिफ मुकामात में कुरान में बात आती है, अगली पारे में फिर आएगी सूरत आले इमरान में, और इसी तरह से आगे सूरत रूम तक चलता है। आइए इसको पढ़ते हैं। आप इन आयतों को पढ़ते वक्त तदब्बुर करेंगे, सिर्फ गौर करें कि मैं कहीं किसी ऐसी चीज में तो नहीं हूं कि जिसका ये अंजाम हो जाए। और याद रखिए कि मक्का का मुआशरा सूद में इंडल्ज था, हर बंदा हर तरह से सूद को इस तरह से लेते थे, कहते थे इसके बगैर कारोबार नहीं चलते, काम नहीं चलता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दोबारा इंसानियत उसी मैदान में आ गई, हालांकि अल्लाह ताला के फैसले बहुत बड़े बड़े हैं जो आप इन आयतों में पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस चीज से ना सिर्फ ये कि खुद निकाले बल्कि वो दूसरों को भी निकालने का जरिया बन जाए। अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं इनका हाल उस शख्स जैसा होता है, इमेजिन करें किसी बावले शख्स को जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, यानी किसी को जिन चिमटे हो तो वो दीवानों की तरह की हरकतें करता है ना, बावला हो जाता है। इसी तरह सूदखोर माल की मोहब्बत में पागल हुआ होता है, और इस हालत में इनके मुबतला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं, ये जुमला हाईलाइट कीजिए, ये मिसकंसेप्शन कल भी थी और आज भी है, क्या इन नमल बई मिसलो रिबा, तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज है, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा इस जुमले को खोल देती हूँ। देखिए जाहिर तिजारत और सूद एक ही चीज लगती है, जबकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वहल्लल्लाहुल बई वहर्रम रिबा, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। आप देखिए कि फर्क किस चीज का है, अल्लाह के एक चीज को हलाल कहने का और अल्लाह के एक चीज को हराम कहने का। मिसाल देती हूं कि आपको खुशबू आती है बिरयानी की, आपके सामने दो डिशेस रखी हुई हैं, दोनों में चले शान बिरयानी मसाला भी डला हुआ है, सब के अंदर वो चावल भी है, खाना है। आप पूछते हैं ये दो डिशेस में क्यों है, बताने वाला आपको बताता है कि ये जो डिश है इसमें जो मीट है ना वो हलाल है, और दूसरे में है सब कुछ लेकिन उसका मीट जो था वो गैर सबीहा था। तो क्या आप कहेंगे कि इन्ना मत दिस बिरयानी इज मिसलू लाइक दिस बिरयानी, फर्क किस चीज का है, हलाल और हराम का। आप इस जुमले को सुनें फिर दोबारा, कि सूद को और तिजारत को लोग जब बराबर कहते हैं तो यही मिसाल है। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, कालू इन्नमल बई मिसलू रिबा, आज बहुत सारे लोग यही धोखा खुद को देते हैं कि तिजारत और उसमें क्या फर्क है, हालांकि फर्क हराम और हलाल का। एक और मिसाल ले लीजिए, एक मर्द एक औरत के पास आता है, वो उसकी बीवी है, वही ख्वाहिश उससे भी पूरी कर सकता है, वही उससे उसको लज्जत मिलेगी जो किसी एक बाहर की किसी औरत से ख्वाहिश पूरी करे। फर्क किस चीज का है? चीज तो एक ही है, हलाल और हराम का फर्क है, यही तिजारत और सूद का फर्क है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप खुद ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं कि जब अल्लाह किसी चीज को हलाल कह दे तो मैं और आप उसको कभी भी हराम नहीं कह सकते, और जिसको अल्लाह मना कर दे उसको मैं और आप क्या दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए उसको हलाल नहीं कह सकती। करो क्या, फमन जा हुमा इज्जतों में रब्बी ही, बस जिस शख्स को इसके रब की तरफ से नसीहत आ पहुंचे, पहुंची हमें अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, फंतहा, तो आइंदा के लिए वो रुक जाए सुदखोरी से तो क्या होगा, कल तक इंडल्ज थे आज पता चल गया, डोंट वरी फलहुमा सलफ, तो उसके लिए जो कुछ पहले खा चुका सो खा चुका, वमरुहु इलल्लाह, और इसका मामला अल्लाह के हवाले, फिर नहीं कहा कि माफ कर देगा लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह माफ करेगा, आइंदा के लिए छोड़ दो। क्या पता चला, जिसको सूद की शिद्दत नहीं पता थी, उसकी हुरमत नहीं पता थी, ये नहीं पता कि सूद खोर जब कब्र से निकलेगा तो वो बावला होगा, नहीं पता थी, आज पता चल गई, क्या करे, फंता, दैट्स इट, क्लोज द डोर, दैट्स इट, तो अल्लाह ताला उसको माफ करेगा। असल पकड़ किसकी है, वमन आदा, जो इस हुक्म को सुनने के बाद फिर इसी हरकत को दोहराए, फौलाई का साबुन नार, वो आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह का फैसला क्या है, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद का मुठ मार देता है, एलिमिनेट करता है अल्लाह सूद को, वह यूरोप सदकात, और सदकात को नशो नुमा देता है, और ये सच है, जिस चीज में सूद आ जाता है वो चीज ज्यादा दिन चलती नहीं है, वो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, वो घर बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो तिजारतें खत्म है, और अगर कारोबार में आ गया तो हजारों आते हैं लेकिन बरकत खत्म होती है, ये अल्लाह का फैसला है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला कौन है जिसके ये सारे फैसले, जिसके हुक्म और मामले में और आप पढ़ रहे हैं, ये किसी इंसान की बातें नहीं है, वो अल्लाह कौन है, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन नसीम, और अल्लाह किसी ना शुक्र बदअमल इंसान को पसंद ही नहीं करता। यहाँ कफ्फार कौन है, सूदखोर, सूद इंटरेस्ट के साथ मामले वाला, और असीम गुनाहगार, कुफर का लफ्ज बोल दिया क्योंकि नशुक्र है ना, अल्लाह से चीज लेने की बजाय बैंकों से लेता है, और हलाल से लेने की बजाय गलत तरीकों से लेता है। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती, बेशक जो लोग ईमान लाए और उसके बाद अमल सवाले करेंगे और नमाज कायम करें और जक़ात दें, इनका अजर बेशक इनके रब के पास है, और इनके लिए किसी खौफ और रंज का कोई मौका नहीं। उलमा इस आयत पे कहते हैं कि सूद के साथ ही आमनु के बाद अमिलु सालियात की बात क्या है, कि ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होने के बाद दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत है, यानी तजदीद ईमान की जरूरत है, कबायर में से है। जिस तरह आप कह लें कि अकीदे में शिर्क है ना, कबीह तरीन बिगेस्ट सिन अकीदे में, अल्लाह से ताल्लुक में शिर्क है, इंसानी मामलात में सबसे बड़ा जो गुना है, जो सबसे बैड थिंग है, वो इंटरेस्ट है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि अब इसके बाद दोबारा नमाजें पढ़ोगे, जकात दोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। बाकी रह गए वो लोग जो अभी भी किसी सोच में, तो फरमाया लोगो जो ईमान लाए हो, देखिए स्टिल अल्लाह उनको ईमान वाला कह रहा है, इसलिए कि अल्लाह को पता है ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। ये ऐसे ही मुआशरे के रंग में रंगे थे, इन्होंने लोगों की बातें बोलनी शुरू कर दी कि आज के दौर में तो मुमकिन नहीं इंटरेस्ट के बगैर घर चले, और आज के दौर में ये मुमकिन नहीं वो नहीं। अल्लाह ताला का जरा जुमला सुनिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, बस इस पे 3 सेकंड सोचिए, ए ईमान वालो, ईमान की निस्बत अल्लाह से डर जाओ। खुद से पूछते हैं कि अल्लाह से डरी हूं, कैसे पता चलेगा अल्लाह से डर गई हूं, तो उसका अमली इजहार क्या है, वज़रू मा बकिया मिन रिबा, तो छोड़ दो जो बाकी रह गया रिबा में से, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ईमान के साथ जोड़ रहा है अल्लाह इसको, ये कोई ऑप्शनल थिंग नहीं है, ये जन्नत के दर्जों की बात नहीं है, जन्नत में एंट्री की बात हो रही है। फ़इल्लम तफ़लु, फिर भी नहीं मानते, फिर अगर ना करो, फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है, और अल्लाह और उसके रसूल से जंग होगी तो कौन जीतेगा। देखिए आप नोट कीजिएगा, बाद में जाके रिप्ले में सुनिएगा, जब से ये मौजू शुरू हुआ मैंने खुद से कुछ नहीं बोला, सिवाय इसके कि किसी बात को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़े। ये कुरान की आयत की शिद्दत है जो इस वक्त मैं आपके चेहरों से देख रही हूं। ये किसी के अफकार नहीं है, ये किसी की थॉट नहीं है, ये किसी का फतवा नहीं है, ये किसी इमाम की बात नहीं है। अभी अभी तो मैंने आपको एक हदीस भी नहीं सुनाई और यहां एक भी नहीं सुनाऊंगी। इंशाल्लाह आगे जाएंगे जहां थोड़े से और जज्ब की कैफियत होगी। सिर्फ अल्लाह के कलाम का ये लफ्ज है कि फिर अल्लाह से ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। और उलमा ने एक बार इस मसले पर रिसर्च की कि सोचो जरा कुरान को देखो, सबसे ज्यादा सख्त बात किस मसले पे है। किसी ने शिर्क की बात की होगी, किसी ने नमाज की, जिस पे सारे मुत्तफिक हो गए जब सबकी राय थी, उन्होंने कहा सूद। क्योंकि पूरे कुरान में किसी बात पे फाजन भी हरब मिन अल्लाह नहीं है। और रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को तीर पकड़ाएगा और कहेगा चलो अल्लाह की तरफ फेंको। फाजन भी हरब मिन अल्लाह व रसूली ही, तो अल्लाह और रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। यानी मुस्लिम हुकूमत को इजाजत है कैसे लोगों से जंग डिक्लेयर कर दें। अब भी तौबा कर लो, फाइन तुब तुम। कुछ लोगों का दिल और पिघल गया, कहा अब भी तौबा कर लो और यानी सूद छोड़ दो तो क्या होगा। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। फलकुम रूसुम वालिकुम, तो असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। अल्लाह ये नहीं कह रहा हैंड टू माउथ हो जाओ, सब छोड़ के सड़क पे आ जाओ। नहीं, जो तुम्हारा टोकन था, जो उस शुरू बिजनेस में था या उस घर की कोई टोकन चीज थी, वो तुम्हारी है। हालांकि असूलन अल्लाह कहता गुस्से में छोड़ दो वो भी, हम तो छोड़ देते हैं ना गुस्से में अपनी असल चीज भी। नहीं, फलकुम रोसुम वालिकुम, असल सर लेने के तुम हकदार हो। ला तस्लिमो न वला तुस्लमुन, ये है इसकी थीम। न तुम किसी पे जुल्म करो न तुम पे जुल्म किया जाए। बस यहां पे बात पूरी हो गई सूद की। अब इसके बाद कर्ज की बात है, आइए देखते हैं इसको। वइन काना ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा, और अगर तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो, किसी ने तुमसे कर्ज ले लिया, सूद ना लो, सदका नहीं देते, कर्ज दे दो। अब कर्ज दिया, जिसको दिया वो तंगदस्त है, तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो। इधर एक रिवायत जरूर सुनाऊंगी, हालांकि वक्त इजाजत नहीं भी दे रहा, लेकिन जरूरत है इसकी। और वो क्या है कि जो किसी को कर्ज देता है, उसकी शरायत आगे आएंगी। अभी वक्त का मुअय्यन कर ले, एक महीने के लिए आप कर्ज दे रहे हैं किसी को। मिसाल है, आपने किसी को $500 कर्ज दिया एक माह के लिए, हर दिन आपको $500 सदका करने का अजर है। और एक महीना गुजर गया वो नहीं दे सका, वो कहता मुझे एक महीना और दे दो, तो हर दिन उसके डबल का अजर है। ये है फनजीरतुन इला मैसरा, यानी लोगों का खून ना निचोड़ो जरूरतमंदों को सूद पे पैसे देने की बजाय, असल कर्ज भी तुम उनको हल्का कर दो, और जो सदका कर दो तो वो तो तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है। यानी जो भी ऐसा कोई गरीब है नहीं दे पाता, उसको माफ कर दो अगर तुम समझो। और याद रखो, अब ये अगली आयत है, इसको हाईलाइट करिए, तरतीब नजूल से आखिरी आयत है। यानी नबी सल्लम पे नाजिल होने वाली आयतों में इस आयत को आखिरी माना जाता है। वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, अल्लाह अकबर, उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापिस हो गए। वहां हर शख्स को इसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और किसी पर जुल्म हरगिज ना होगा। यहां पे माली मामलात की ये बात एक किनारे पे पहुंची। क्या पता चला कि जब अल्लाह के पास जाने का यकीन होता है तो इंसान जीने से ज्यादा जाने की फिक्र करता है। यही इस सबक का खुलासा था। सब कुछ आसान हो जाएगा जिस वक्त मौत याद आएगी, मैदान-ए-हशर याद आएगा।